आप सीरियस नहीं हो सकते।
ये वो तो है, मगर फिर भी चलो कोई नहीं, ज्यादा तो किया ना मैंने।
अच्छा जी, कभी कभी मुझे वकास जैसा लगते है।
अच्छा, वकास गोंदर?
हाँ, वो मेरी पुत्री है, मेरा शहजादा है। आपको, आप वकास को जानते हो ना? वो तो दुनिया का हीरो है। पहले तो उसको दुनिया बड़ी जानती थी। उस दिन मेरे बेटे को कहता, मेरी इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू थी, तुम्हारी अम्मी ने सारों को बता दिया मेरी शादी होगी, मेरी वैल्यू खत्म हो गई।
नहीं नहीं, तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि राजा बादशाह जी की शादी हुई हुई है, किसी को नहीं।
नहीं नहीं, वकास मोहम्मद अली को बता रहा था ना अभी। हाँ। जब उसका प्रोग्राम था ना जिस दिन वो आए हुए थे, तो वहाँ पे वकास बड़ी खूबसूरत पाशर उसने गाड़ी ली है, तो मुझे बेटे को कह रहा था, कहता बस तुम्हारी अम्मी ने भी मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा बोली, मेरी इतनी इज्जत थी, मेरी इतनी कदर थी, सबको बता दिया मेरी शादी होगी, बस उसके बाद मेरी वैल्यू खत्म हो गई। मगर राजा जी, ऑल स्टेट के साथ आपका ताल्लुक है, ऑल स्टेट इंश्योरेंस एंड ऑल ओवर ओंटेरियो, आप जहां जहां हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप गाड़ी है, आपके पास घर है, आपका बेटे ने इंश्योरेंस लाइसेंस लिया है, आप अपने बेटे की इंश्योरेंस देख रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब में से कोई देख रहा है, तो रादर देन कॉलिंग टू कंपनीज, वैसे तो बैंक मॉर्गेजेस भी देते हैं, बैंक इंश्योरेंस भी देते हैं, तो बेटर टू टॉक टू समबडी एंड दैट इज राजा बादशाह। गिव हिम अ कॉल 6472903773, 290-37-73, 290-37-73। वो अल्लाह मुजफ्फर अली को करवट जन्नत नसीब करे, राजा बादशाह वो कहते थे, तू तो मरी भी पड़ी हुई ना, तो किसी को यकीन नहीं आना ये मर गई है कि जिंदा है। कहते जाहिर है,
जाहिर है, बड़ा ये वैसे ये झूठ नहीं बोलते।
ओ माय गॉड,
राजा बादशाह में एक चीज है कि झूठ नहीं बोलते, एकदम साफ गवाह।
अच्छा, मुजफ्फर जी हमेशा यही कहते थे, तुम मर भी गई ना, तो किसी को यकीन नहीं आना ये मरी है कि जिंदा पड़ी हुई है। तो राजा बादशाह, अब आप बताएं माजिद भाई को क्या इंश्योरेंस के बारे में बताएं, कौन कौन कॉल कर सकता है, ओंटेरियो में से कॉल कर सकते हैं कि ओंटेरियो के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल करना क्यों जरूरी है?
जी जी बिल्कुल जरूर, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। ओंटेरियो के अंदर से कॉल करेंगे क्योंकि मेरा लाइसेंस ओनली अलाउ मी टू गिव इंश्योरेंस फॉर दी ओंटेरियो लाइसेंसेस। ओंटेरियो का ही लाइसेंस है, आप ओंटेरियो में कहीं भी हैं, इंश्योरेंस आप देख रहे हैं गाड़ी की, घर की, टेनेंट की, कंडोमिनियम की, आप जरूर रब्ता करें। दो गाड़ियां और एक होम अगर आपके पास है, इसको कंबाइन करते हैं तो $1775 की सेविंग भी है, प्लस देर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर दी कोर्ट। मतलब आप कोर्ट लें, आपको प्राइस पसंद आती है तो प्रोसीड करें, मुझे बताएं आपकी नीड क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं इंशाल्लाह आपको आपके हिसाब से कोशिश करके बना के दूंगा कोर्ट। और उसके बावजूद अगर पसंद ना आए तो इंशाल्लाह जरूर कुछ अर्से बाद दोबारा कोर्ट दी जा सकती है। आपका रिन्यूअल अगर आगे आए तो जरूर चेक करें, अगर शाह पर हम कर रहे हैं तो जरूर चेक करें, मुझे कॉल कर लें, टेक्स्ट मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। मेरा नंबर भी ले लीजिए 6472903773, सुबह 9 से शाम 9 तक आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, सर्कल में किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है तो कोर्ट दिखाइए, चेक करें, देखें क्या ऑप्शन है आपके पास।
6472903773 राजा बादशाह जी का फोन नंबर है। हम जब आपका एडवर्टाइज करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि 1775, तो लोग उससे गलत फहमी समझते हैं कि अगर मेरे पास दो गाड़ियां और एक घर है तो ही मेरे पैसे सेव होंगे। तो आप जरा ये क्लैरिफाई कर दें कि चाहे आपके पास एक गाड़ी हो, घर भी ना हो, या एक घर हो, घर गाड़ी भी ना हो, या एक घर या एक गाड़ी हो, तो उसमें भी आप डिफरेंट पैकेजेस बना के सेविंग करवा सकते हैं लोगों की।
जी जी, ये जो $1775 की सेविंग है ना, ये तो अप फ्रंट सेविंग है फॉर मल्टी व्हीकल डिस्काउंट एंड कार प्लस होम डिस्काउंट। अगर आपके पास दो गाड़ियां, यू डोंट हैव टू बी विद द टू कार्स, अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपके पास एक होम है या आप एज अ टेनेंट रह रहे हो, तो आप फिर भी उन्हें कम्बाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये डिस्काउंट मिलते हैं। थोड़े से डिफरेंट होता है नंबर में, लेकिन वहां पे मेरी ये कोशिश होती है कि बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड इंश्योरेंस हिस्ट्री और आपका कार मेक एंड मॉडल क्या है, आपको वो जहां जहां पे जिस जगह पे, क्योंकि इंश्योरेंस की जो प्राइस होती है ना, वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं पे विंटर टायर डिस्काउंट देख लिया, कहीं पे आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री देख ली, कहीं पे आपकी इंश्योरेंस हिस्ट्री देख ली, तो जहां भी जो सेविंग हो सकती है वो मैं डाल के करके आपकी तो आपको फिर प्राइस देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी प्राइस।
6472903773 राजा बादशाह जी का फोन नंबर है, ऑल स्टेट के साथ मुंसलिक हैं। और लास्ट वीक हमने बात की थी आपसे थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में
जी।
आप बताइए कि इसके अलावा भी और कोई इंश्योरेंसेज आपके पास होते हैं या सिर्फ ये दो ही है मेन?
नहीं, बेसिकली गाड़ी में यही होता है, यहाँ तो आपकी फुल कवरेज होती है या आपकी वन वे कवरेज होती है। लाइक आई सेड बिफोर के वन वे कवरेज उस वक्त होती है जब आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है एंड इफ यू फील पर्सनली कि मुझे यार वन वे ही चाहिए, आई डोंट वांट टू पे मोर क्योंकि मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग विल कॉस्ट मी मोर, तो मैं रिप्लेस कर लूंगा गाड़ी, ठीक है। लेकिन फुल कवरेज में एक तो होती है स्टैंडर्ड फुल कवरेज जिसमें 1 मिलियन या 2 मिलियन चूज करते हैं, फिर उसके बाद कोलिजन का पोर्शन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का पोर्शन होता है जो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, फिर उसके बाद एडिशनल ऑप्शनल कवरेज होती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं यार हम मिसाल के तौर पर हमें रोड साइड असिस्टेंस भी दे दो, हम कहीं और सेपरेटली पे नहीं करना चाहते, हम विद इन द इंश्योरेंस रखते हैं, फिर वो भी ले सकते हैं। फिर एक होती है माइनर कन्वीनियंस।
रोड साइड असिस्टेंस क्या कवर करता है?
ये इसमें होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, फॉर एग्जांपल इन वन ईयर आप चार कॉल कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी इन यूएस और कनाडा के अंदर कहीं पे भी स्टक हो गए हैं, आपको इफ यू नीड टोइंग, यू नीड बैटरी बूस्टिंग, यू नीड हेल्प फॉर रिप्लेसिंग द कार टायर, तो ये इस तरह की जो सर्विस
प्रोवाइड करते हैं। आई डिडंट नो दैट इंश्योरेंस कंपनी कवर्स दैट।
हाँ तो आई कोड लिए ना सर, आपको बताते हैं। आपको नहीं
देखिए, आपसे बात करने में एक चीज का इजाफा हो गया आज हमारी नॉलेज में।
जी जी, अब तो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो ये रोड साइड असिस्टेंस इन हाउस ऑफर करती हैं, हमारे ऑल स्टेट का भी है, बड़ी चीप होती है, 3-4 डॉलर।
यू हैव टू बाय दैट एक्स्ट्रा।
जी वो जैसे मैंने कहा ये ऑप्शनल एडिशनल कवरेजेस होती हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसकी प्राइस पे करें और आपको मिल जाती है, लेकिन वो भी आपको अच्छी बेहतर प्राइस के ऊपर मिल जाती है इंशाल्लाह।
That's wonderful. So, मैं एक्स्ट्रा बाय करने की जरूरत ही नहीं किसी और बाहर की कंपनी से, क्योंकि तीन चार दफा जो है ये तो अच्छी खासी टाइम है, ये तीन या चार दफा, आप इससे ज्यादा तो कभी किसी गाड़ी खराब ही नहीं होती है हाईवेज वगैरह पे एक साल के अंदर।
जी जी बिल्कुल, नहीं एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब इट्स अगेन ये ओपन ऑप्शन है कि अगर आपको चाहिए तो इस देयर, इफ नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है। कुछ लोग अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन से सेटिस्फाइड हैं, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर वो उनकी कहते हैं ठीक है अगर आपके पास है तो आप ना लीजिए।
और आपने कहा ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है?
जी बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, ये 2-3 डॉलर 4 डॉलर का डिफरेंस होता है मंथली।
वाओ, ओके। सब इन तमाम चीजों के लिए और इसके अलावा भी जो भी आपको इंटरेस्ट करता है या ये कि आपकी जो नीड है उसके बारे में आपने पूछना हो, इंश्योरेंसेस के बारे में, घरों की एंड गाड़ियों की, राजा बादशाह जी को जो ऑल स्टेट के साथ मुंसलिक हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर लें। 6472903773 इनका फोन नंबर है। राजा जी एक दफा अपनी तरफ से अपना फोन नंबर दे दें।
जी बिल्कुल, 6472903773 सर, आप तक करिए, इंशाल्लाह आपको कोड देंगे और फिर वहां से प्रोसीड करेंगे।
6472903773 राजा बादशाह जी, बेइंतहा शुक्रिया सर आपका।
बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह
खैरन। और कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं टॉप ऑफ द आवर एंड विल बी राइट बैक।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900।
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी से डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाता। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है?
क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में है? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktrucklube.com।
लिथियम आयोन बैटरियों में लगी आग ब्रैम्पटन में तशवीश का बाइस बन रही है। लिथियम आयोन बैटरियां सही इस्तेमाल होने पर महफूज रहती है, लेकिन जब वो नाकाम हो जाती है तो वो भड़क जाती है और आग लग सकती है, जो तेजी से फैल सकती है और काबू से बाहर होकर एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, जो रिहायशों के लिए एक खतरा बन सकती है। लिथियम आयोन बैटरियां इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती मालूमात के लिए brampton.ca/battery safety पर जाएं।
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा। 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज, बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पर। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। अब भी मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रही थी यूरोपियन यूनियन में। आपको पता है ये देखिए, मेरे लिए पाकिस्तान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, और मैं बल्कि एक दिन पहले भी इन्हीं के बारे में कह रही थी कि जनाब करामतुल्ला गौरी साहब से एक चीज कि जो इंसान काम करता है उसकी डेडिकेशन जो है ना, वो उस शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में जरूर बताती है। पंक्चुअलिटी इनकी खत्म है इनके ऊपर। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब एक्स एम्बेसडर हैं। मैं इस लिहाज से कि इस दुनिया में आजकल हम सब मादर पिदर आजाद लोग हैं कि हम किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते, मगर एक इंसान जो उस मर्तबे पे पहुंचा कि जिसने दुनिया के लीडर्स के साथ मिलके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए रिप्रेजेंट किया, जिसमें दुनिया के प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर्स भी थे, उन लोगों के साथ मेल मुलाकात की, उस हवाले से जो नॉलेज उनके पास है वो शायद मेरे पास नहीं है, और मैं वही सीखने के लिए यहां मौजूद हूं। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में, जनाब सरवर साहब ये भी वही, इमरान खान साहब ने भी किसी और पार्टी से निकल के आए थे, सरवर साहब मेरा ख्याल नून लीग के साथ हुआ करते होते थे और वहां से वो पीटीआई में आ गए थे, और उसके बाद सरवर साहब वो आदमी है जिसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो रहा सहा बेड़ा भी गर्क कर दिया था, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कही थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जितने पायलट्स हैं वो सनद याफ्ता नहीं है। आज मैं यही खबर देख रही थी कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया गया था,
वो आज तक बैन नहीं उठा,
बैन नहीं उठा, और उन्होंने ये कहा है कि पीआई, और ये किसने किया था? मैं कहती हूं कि उस आदमी को जिस इलाके से भी वो इलेक्शन लड़े उसने पाकिस्तान के कितने बड़े इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया, दैट इज पीआईए। वेरी सैड, मगर आज जब मैं इस खबर को देख रही थी डिटेल में कि यूरोपियन यूनियन ने पीआईए को अगेन नहीं बहाल किया, उन्होंने कहा है कि जब तक कि वो अपनी सर्टिफिकेशन के मुताबिक नहीं लेके आते अपने एम्प्लॉयज को, तो पीआईए बैन रहेगी यूरोपियन यूनियन के तमाम मालिक में। करामतुल्ला गौरी साहब यहां तशरीफ रखते हैं, सर आपसे ही बात हो जाए कि यार वो सरवर साहब आपको याद होगा नून लीग से आए थे,
उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया था, और मैं वो लाइव देख रहा था, मैंने सर पीट दिया था कि ये शख्स क्या ऑल फॉल बक रहा है।
आई नो,
उन्होंने कहा था कि हमारे तो बहुत से पायलट सर्टिफाइड नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। अब ये एक वजीर से, वो जो कहते हैं हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, तो कौन सा बाहर का मुल्क होगा जो आपकी एयरलाइन पर एतबार करेगा? एक तो आप ये देखिए, मैंने तो पीआईए का उरूज जवाल देखा है, मैंने उरूज के जमाने में देखा था कि पीआईए में पाकिस्तानी मुसाफिर कम होते थे, गैर मुल्की मुसाफिर ज्यादा होते थे, और पीआईए का वो जो नारा है ना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वो किसने दिया था? वो देने वाली थी जॉन एफ कैनेडी की बेगम, इसलिए कि उन्होंने पीआईए की परवाज इस्तेमाल की थी अमेरिका से पाकिस्तान आने के लिए, तो जैकी कैनेडी ने कराची एयरपोर्ट पर उतर के जब उनसे सहाफियों ने सवाल किया था कि मैडम आपका पीआईए पर सफर करने का तजुर्बा कैसा रहा, तो जैकी कैनेडी ने कहा था ओ दे आर अ ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, पीआईए ने उसे अपना लोगो बना लिया, ये मायार था। मैंने तो सफर के दौरान देखा था उस जमाने में कि गैर मुल्की ज्यादा होते थे, वो पीआईए को पसंद करते थे, इसलिए कि पीआईए की जो मायार था सर्विस का वो दुनिया में बेनजीर था। आज हमने उसको किस
नहज पे पहुंचा,
जल्लत में पहुंचा दिया है।
मगर उसमें एक वजह, अगेन मैं पॉलिटिशियंस को जब मैं मुर्दे इल्जाम ठहराती हूं, एक और चीज मैं देख रही थी, अगेन बात फिर कहां से शुरू होती है और कहां चली जाती है, दुनिया की किसी एयरलाइन को चलाने के लिए एयर मार्शल की जरूरत नहीं है। क्या बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में नंबर एक एयर मार्शल का इंचार्ज होना बहुत जरूरी है, एंड नंबर टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो गवर्नमेंट का इदारा जिसमें हर पॉलिटिशियन अपनी जिन बंदों को नवाजना होता है उनको नौकरियां दे रहा होता है, इन दो चीजों ने मेरा ख्याल उसको डुबोया।
आरिफा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो तुम अभी पहले बात कर रही थी कि बिलावल भुट्टो और पीपुल्स पार्टी पीआईए के निजकारी के सख्त खिलाफ है।
जी
क्यों खिलाफ है? इसलिए कि जरदारी ने अपने दौर में पीआईए में हजारों
लोगों को नौकरियां
लोगों को भर्ती किया है जिनका कोई काम नहीं है। मिसाल के तौर पर पीआईए के जहाज कितने हैं? जहाज अब जो फ्लीट बचा है वो मेरे ख्याल से कोई 24-30 जहाजों का फ्लीट है। दुनिया में देखा जाता है कि कमर्शियल एयरलाइंस का کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا جہازوں کی تعداد کے اعتبار سے کیا تناسب ہے. مثال کے طور پر ٹرکش ایئر لائن جو دنیا کی کامیاب ترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے, اس میں تناسب ہے ایک جہاز کے لیے 125 ملازم ہوتے ہیں.
ایک جہاز کے لیے 125
سارا وہ عملہ ہے جو گراؤنڈ پہ بھی کام کرتا ہے, جو ریزرویشن بھی کرتا ہے, جو جہاز
سامان کو لے کے جانا, سامان اتارنا
بھی کرتا ہے, تمام عملہ. پی آئی اے میں ایک جہاز کے لیے 550 سے زیادہ ملازمین ہیں. سوچو کہ وہ ایئر لائنز اگر زمین پر نہیں بیٹھے گی تو اور کہاں جائے گی. یہ دو سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے پی آئی اے میں بھی بے تحاشا اپنے لوگوں کو بھرتی کیا اور اسٹیل ملز میں بھی. دونوں کا حشر خراب ہے, ایک پیپلز پارٹی, دوسری ایم کیو ایم. اسٹیل ملز میں تو ایم کیو ایم نے ہزاروں لوگوں کو ملازمت دی ہے. اسٹیل ملز کو خسارے میں بھیجنے والے, اس کا وہ جو کہتے ہیں بھٹا بٹھانے والے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. تو یہ ملک تو سیاستدانوں اور جرنیلوں کی انانیت کے بنیاد پر چل رہا ہے. اب بالکل درست سوال ہے کہ ایک ایئر مارشل جو ایئر فورس میں جہاز اڑاتا رہا ہو یا ایئر فورس کی کمان کرتا رہا ہو, وہ پی آئی اے جیسی کمرشل تنظیم میں اس کا کیا مقام ہے؟ کیوں ہمیشہ پی آئی اے کا سربراہ ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل ہوتا؟ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے پہلے اچھی طرح ان کو مل رہی ہوتی ہے, پینشن مل رہی ہوتی ہے, گھر لے لیے ہوتے ہیں, اور ان کو پھر وہ چاہتے ہیں کہ
مسئلہ یہ ہے وہ جو
عام آدمی کو نوکری ملے نہ ملے.
کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ اب یہ پاکستان کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو, اس کے مسائل کو جس طرح سے بھی لوٹا جائے اپنے فائدے کے لیے, اپنی ذاتی منفعت کے لیے, وہ سب جائز ہے. عوام 24 کروڑ, 25 کروڑ عوام تو کس گنتی سے.
اچھا, میرا ایک سوال الٹا سا سوال آ رہا ہے, الٹا سا سوال کروں.
ہاں بالکل.
اب دیکھیے, ایئر مارشل یا کوئی جنرل یا یہ جو بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد کسی اور ادارے کے سربراہ لگ جاتے ہیں, سے نادرا کے سربراہ لگ گئے, آپ الیکشن کمیشن کے لگا دیں گے, کہیں اور کے لگا دیں گے,
اب تو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی
وائس چانسلر
جنرل ہونے لگے.
Exactly. تو مجھے یہ بتائیے گا کتنے ہمارے جو چیف جسٹسز ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد پوزیشن دی گئی, اور کتنے ڈپلومیٹ ہیں لائک یور سیلف جن کو, حالانکہ آپ کے پاس بڑا تجربہ ہے سر, کہ آپ نے دنیا جہان کے لیڈر سے ملاقات کی بھی ہے, مختلف سائفرز کو دیکھا ہوا ہے, مختلف آپ نے سیکیورڈ گفتگو سنی ہوئی ہے, تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ایک پوزیشن سے نکال کے کسی دوسری پوزیشن پہ لے آیا جاتا ہے؟
عارفہ بی بی, ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کہ ریسرچ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے سربراہ بھی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں. میں جب یہاں پر آ رہا تھا, میں اس وقت ترکی میں سفیر تھا, میں نے میرے بیٹے نے جب مجھے کینیڈین امیگریشن کے لیے اسپانسر کیا, تو میرا جو کینیڈین امبیسڈر تھا وہ میرا دوست تھا, کیوبیک کا تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ کرامت اللہ تم کیوں جا رہے ہو, تم کینیڈا میں کیوں سیٹل ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جہاں تو نہیں سمجھ سکے گا, اس لیے کہ تو ایک ایسے ملک کا باشندہ ہے جہاں پہ ہر کام قاعدے قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے. میں ایک ایسے ملک کا نمائندہ ہوں جہاں پہ کوئی کام قاعدے قانون کے حساب سے نہیں ہوتا. میں میرا امریکن دوست تھا, میرا سفیر امریکی, وہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ ٹیکسس میں وہ میتھڈسٹ یونیورسٹی ہے, کون سی یونیورسٹی ہے, اس کا ڈین لگ گیا. میں جب یہاں آ رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کرامت اللہ کیا تمہاری حکومت میں کسی کو یہ احساس ہے کہ تم کو گنوا کر वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम अगर अमरीकी होते, तुम हमारे अगर हमारे मुल्क के डिप्लोमेट होते तो हम तो तुमको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का सरबरा लगा देते या किसी यूनिवर्सिटी का डीन लगा देते। हमारे यहां बीवी, हमारे यहां जौहर की कोई कदर नहीं है। मैं एक वाकया तुम्हें सुनाता हूं। वो जो हमारे नूरानी साहब थे,
जो श्यामन नूरानी,
नहीं नहीं श्यामन नूरानी नहीं, वो नूरानी, वो मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में वो हमारे वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत उमूर खारजा थे, जैन नूरानी उनका। बल्कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जुनेजो को डुबोने में जैन नूरानी का जितना हाथ था, जितना किरदार था, किसी और वजीर का नहीं था। उनको मसला फॉरेन सर्विस के अफसरों से बहुत रहता था। मुझसे तो उनका कई बार झगड़ा हुआ। मुझसे एक बार कहने लगे,
हालांकि आपने अपनी किताब में जुनेजो साहब की बहुत तारीफ की हुई है।
जुनेजो साहब मेरी नजर
बहुत तारीफ की हुई है,
मेरी नजर में पाकिस्तान के सियासतदानों में जो सबसे ईमानदार
हीरा,
वो हीरा था शख्स। लेकिन उसको गुमराह किया, इसलिए कि वो सादा लौह था। उसको गुमराह करने वाले मुशीरों में जैन नूरानी का नाम सरे फेरिस्त आता। एक बार जैन नूरानी साहब मुझसे कहने लगे कि गौरी साहब, मैंने आपके मुतालिक बहुत सुना है, वो सीनियर अफसर ये कहते हैं कि पाकिस्तान फॉरेन सर्विस के जहीन तरीन अफसरों में आपका शुमार होता है, तो आप क्या समझते हैं कि आप अपने टैलेंट की बिना पर ऊपर तक जा सकेंगे? मैंने कहा, नूरानी साहब, अल्लाह आपको भी उम्र दे, मुझे भी उम्र दे, आप देखिएगा कि मैं अपने टैलेंट की बुनियाद पर ही ऊपर जाऊंगा, इसलिए कि मेरा तो कोई रिश्तेदार, कोई अजीज ना सिविल सर्विस में है, ना किसी अदालत में है, ना किसी फौज, ना फौज का जर्नल है। मैं तो तने तनहा हूं अपने खानदान का, जो सिविल सर्विस में आ गया, फॉरेन सर्विस में आ गया, और आज तक मैंने जो तरक्की पाई है वो सिर्फ अपनी अपने जौहर की बुनियाद पे पाई है, अपने टैलेंट की बुनियाद पे पाई है। मैं किसी और का मरहूने मिन्नत नहीं हूं, मैं किसी और का मरहूने एहसान नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अच्छा, हम भी देखेंगे कि आप कितनी दूर तक जाते हैं। वो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत करे।
मैं एक बात को कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों की यहाँ पे मुलाकात होती है, कोई अपने रिश्तेदारों की बड़ाई बयान करता है, कोई अपनी बड़ाई बयान करता है। मैं करामतुल्लाह, आप खुदा गवाह, आपके सामने की बात नहीं है। मुझे हालांकि मैं ज़ियाउल हक साहब की पाकिस्तान को डुबोने वाले और इस्लाम को बेचने के नाम से कुरान को, उन्होंने कुरान की आयतों को बेचा, मगर उन्होंने हमेशा अपने पीले स्कूल का भी जिक्र किया, यानी विदाउट एनी अप्रोच। शायद कोई और रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। आपने भी हमेशा ये बात को एक्नॉलेज किया है कि आपके वालिद साहब आपको लेके जब पाकिस्तान पहुंचते हैं और आपने तालीम हासिल की, तो सिर्फ एज ए ब्राइट स्टूडेंट एंड एज ए शार्प पर्सन अंग्रेजी में उर्दू में लिखते भी थे, बोलते
तो
भी थे।
मैंने तो मैट्रिक तक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा था, और मैं उस स्कूल में पढ़ता था जिसकी कोई इमारत नहीं थी। स्कूल की इमारत सिर्फ चार कमरों पर मुश्तमिल थी। उनमें से एक कमरा तो प्रिंसिपल का था, दूसरे में इंतजामिया के अफराद बैठते थे, सिर्फ दो कमरे थे जिसमें आठवीं या नवीं दसवीं, हमारे जमाने तक ग्यारहवीं, ग्यारह जमातें होती थी मैट्रिक के लिए, तो ग्यारहवीं क्लास के लोग बच्चे उसमें बैठते थे। उन दो बाकी हम
आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे,
टेंटों में बैठते थे बीवी। और कराची में उस जमाने में आबादी कम थी और कराची में हवा बहुत चलती थी, अक्सर ये होता था कि टेंट उड़ जाते थे, तो फिर हम दरख्तों की छांव में बैठ के पढ़ते।
आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे।
मैं आउटस्टैंडिंग था। मैंने अपनी याददाश्तें रोजगार सफीर अपने तीन असातिज़ा के नाम मानून की है। मैंने लिखा है कि वो ये तीन میرے جوہر شناس اساتذہ تھے جنہوں نے میرے اندر جوہر کو تلاش کیا اور پھر اس کی آبیاری کی.
اس کو گھڑا, اس کو کہتے ہیں نا ہیرا جب نکالا جاتا ہے زمین میں سے تو وہ ایک پتھر ہی ہوتا ہے, اس کو تراش کے ہیرا. اچھا اب آپ نے یہ بات کی, آپ نے کہا کہ امریکہ کے بھی جو امبیسڈرز ہیں یا بڑے سفیر وغیرہ ہیں ان کو ادر جگہوں پہ ان کی جابز ہو جاتی ہیں, تو پاکستان میں اس کا صرف آرمی آفیسرز کو ہی پوزیشن,
پاکستان میں یہ خصوصیت تو صرف وردی والوں کو حاصل ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے اصل مالک ہیں. عرفہ, آج کی تاریخ بہت اہم ہے.
جی سر, آج
3 جون ہے.
3 جون
1947 کو برطانوی راج کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا تھا,
اور قائد اعظم سے انہوں نے بات بھی کی,
اور اس سے پہلے قائد اعظم اور جواہر لال نہرو سے, کانگریس اور مسلم لیگ کے تمام لیڈروں سے, سیدھا سیدھا لیڈروں سے انہوں نے ملاقات کی تھی. مجھے یاد ہے میں 6 برس کا تھا, 6 برس کا ہونے والا تھا, ہم شملہ میں تھے, میرے والد چونکہ سرکاری ملازم تھے تو گرمیوں کے زمانے میں دفاتر دلی سے شملے منتقل ہو جاتے تھے, کیونکہ وائس رائے بھی دلی سے شملہ چلا جاتا تھا گرمیاں گزارنے کے لیے. تو مجھے یاد ہے, اچھی طرح سے یاد ہے, 3 جون کو ابا نے کہا, ہم سب بچوں سے کہا کہ بیٹا بچوں شام کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقریر کرنے والے ہیں اور وہ کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں. تو اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو ہوتے نہیں تھے, ریڈیو ہوتا تھا صرف, تو ہم سب ریڈیو کے گرد جمع ہو گئے تھے اور شام کو پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خطاب کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ ہندوستان کا بٹوارا کر دیا جائے اور جو علاقے مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے اور جو علاقے ہندو اکثریت کے ہیں وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے. اس تقریر میں انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا کہ کس دن تقسیم کا عمل ہوگا.
3 جون 1947
کو وہ تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ہندوستان کے بٹوارے کا اعلان کیا تھا. تو آج ہم پاکستانیوں کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے, اس لیے کہ تاریخ یاد رکھنے کے متعلق کسی دانشور نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں ان کا جغرافیہ انہیں بھول جاتا ہے.
کیا بات ہے, جو تاریخ بھول جاتے ہیں ان کا جغرافیہ
انہیں بھول جاتا ہے, اور ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کیا, اسی لیے ہم نے آدھا ملک تو گنوا چکے ہیں لیکن آج بھی ہم وہی کہانی دہرا رہے ہیں, وہی داستان دہرا رہے ہیں, اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں.
سر اگر آج کی اگر آپ نے جیسے اس بات کا ذکر کیا, اگر میں آج ہی کے حوالے سے آپ سے بات کروں, پاکستان میں سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے 108 کیسز ہیں, آج سائفر کے کیس میں بھی چھوٹ مل گئی, ہائی
کورٹ نے بری کر دیا ان کو.
جی بتائیے,
لیکن وہ رہا نہیں ہوں گے
ظاہر, ابھی سنا ہے کہ 10 کیسز میں تو اب تک بری ہو چکے ہیں, کچھ اور مس بھی ہو جائیں گے, مگر عمران خان نے کہا ہے کہ میں ہر کیس کو فائٹ کر کے اپنے آپ کو ثابت کروں گا.
وہ شیر دل ہے, وہ نڈر ہے, وہ پاکستان سے وفادار ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اور دوسرے چھٹ بھئیے سیاست دانوں کا دستور تو یہ ہے کہ جس دن وہ منصب سے فارغ ہوتے ہیں, جس دن ان سے کرسی چھینی جاتی ہے, اس دن وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے یا تو دبئی چلے جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں.
ویری سیڈ.
عمران کو تو یہ بار بار یہ پیشکش کی گئی کہ تم کو ہم رہا کر دیں گے بشرطے کہ تم پاکستان سے چلے جاؤ, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میرا گھر ہے, میں پیدا یہیں ہوا ہوں, میں کیوں یہاں سے جاؤں. جنہیں جانا ہے وہ تو وہ ہیں جن کے لیے پاکستان صرف सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। पाकिस्तान तो उनके लिए सोने की कान है जिसको वो अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, खुरेदते रहते हैं, खुरचते रहते हैं, और जिस दिन उनसे कृषि छिन जाती है उस दिन अपना सामान सफर लाद के बाहर चले जाते हैं। इमरान तो उस किमाश का सियासतदान नहीं है।
बहुत शुक्रिया। एनीथिंग एल्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं आज की पाकिस्तान की पॉलिटिकल? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारा बजट 10 जून को पेश होना था, शायद अब डिले हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना गए हुए हैं, तो क्या फरमाएंगे इसके बारे में?
चाइना किस लिए गए हैं? तो ये तो इन भाइयों का दस्तूर तो ये है कि इनको जब मौका मिलता है तो ये दुनिया भर में सैर सपाटे करते फिरते हैं। चीन से क्या लेकर आएंगे? सवाल यह है कि चीन को तो आपने सी पैक के हवाले से जितना मायूस किया है, वो चीनी तो बहुत बर्दाश्त और तहम्मुल वाले लोग हैं, और वो जो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि वो उन लोगों में से हैं जो किसी एक बास्केट में अपने सब अंडे नहीं रखते हैं। उन्हें पाकिस्तान ने मायूस किया है। उन्होंने मुतबादल के तौर पर अफगानिस्तान में वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो वो पाकिस्तान में कर रहे थे, और पाकिस्तान में वो उसको तकमील तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका चूंकि अमेरिका का गुलाम है, साम्राज्य का गुमाश्ता है, लिहाजा वो साम्राज्य को की मंशा के लिए, उसकी खुशी के लिए अपने सबसे वफादार दोस्त को नाराज कर रहे हैं। मैं चीन में रहा हूं, उस जमाने में चीनी और पाकिस्तानी हम ये नारा लगाते थे कि वो चीनी में कहा करते थे चुम्बा यूई वान सोए, कि चीन पाकिस्तानी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। वो कहते थे कि पाकिस्तान और चीन
पाक चीन दोस्ती
पाक चीन दोस्ती हिमालय से ज्यादा बुलंद और समंदर से ज्यादा गहरी है। आज हमने उन चीनियों को मायूस किया, तो अब शहबाज शरीफ क्या लेने गए?
आई नो, मगर देखिए सबसे ज्यादा सी पैक मुतासर हुआ था इमरान खान साहब के दौर में, जो भी मामला थे
इमरान ने बहुत बड़ी गलती की,
सी पैक को रोक दिया गया, ऑलमोस्ट रोक दिया गया,
लोगों को अपनी काबीना में शामिल किया,
जिसे भी अभी पीआईए का जिक्र आया,
जो
सरवर साहब जैसे लोगों को
नहीं, सरवर साहब थे वो फिर दाऊद खानदान के वो
एग्जैक्टली
चश्मे चराग थे, ये वो सरमायादार थे जिनकी वफादारियां मगरब के साथ थी।
वेरी सैड।
वो तो इमरान खान की गलतियों में सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि मिल्लत फरोश कमर बाजवा को उसने मुद्दत मुलाजमत में तौसी,
मगर उनके इर्द गिर्द भी थी, जैसे अभी माजरत की ख्वास करूं मैंने यहाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अभी जैसे सरवर साहब का भी जिक्र हुआ, ये उनकी गलत च्वाइस थी कि सरवर साहब को उन्होंने अपनी काबीना में आने दिया था। यूरोपियन कमीशन ने कौमी एयरलाइन पीआईए की परवाजों पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला मुअख्खर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इकदाम न करने की वजह से पाबंदी में तौसी कर दी गई है, और 31 मई को यूरोपियन यूनियन कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। और ये शोशा छोड़ा किसने था? जनाब सरवर साहब ने छोड़ा था। तो ये उनकी एक गलती थी। सर आज एक और बड़ी बात है कि पहले लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, खलाई मखलूक इस्तेमाल कर लिया जाता था, यानी बैनुस्सतूर बात की जाती थी, मगर अब गवर्नर पंजाब ने आज कहा है कि जजेस, जनरल, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों का बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। ये गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है, तो इसके बारे में कुछ कहें? उन्होंने कहा है कि मुल्क में सजा और जजा का अमल बेहतर बनाने की जरूरत है, जबकि जजों, जनरलों, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों का बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। ये केपीके के गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये कहा है और पंजाब के गवर्नर ने भी ये कहा है।
ये भी असल में پاکستانی عوام کے پاکستانی قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. دیکھو نا ایک حد تک ہی عوام بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. ان کو کہیں بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک تاریک سرنگ میں جب ہو تو اس کے دہانے پر اگر روشنی کی کوئی کرن نظر آ جائے تو امید بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس تاریک سرنگ سے نکل جائیں گے. پاکستان کے عوام اس حالت میں ہیں کہ ان کو تاریک سرنگ کے دہانے پر روشنی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا. سیاست میں ابتری ہے, معیشت میں زبوحالی ہے, عوام پر ٹیکسوں کا جو بوجھ لادا گیا ہے اس نے کمر توڑ دیا. اور اب ابھی تم نئے بجٹ کی بات کر رہی تھی, اب جو بجٹ آنے والا ہے وہ بجٹ بنایا جائے گا آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کی نیت سے. اور آئی ایم ایف کا مطالبہ وہی ہے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرو, گیس کے نرخوں میں اضافہ کرو.
مگر ابھی تو پٹرول کی قیمت بھی 16 روپے کم ہو گئی.
کم ہو گئی ہے لیکن اب وہ اور اضافی سرچارج کی بات ہو رہی ہے, نئے ٹیکسوں کی بات ہو رہی ہے. تو عوام میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, ابتری بڑھتی جا رہی ہے, بددلی بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ جو تم نے مقولہ سنا ہوگا نا کہ کسی شخص کو اگر تم دھکیلتے دھکیلتے اس کی پشت دیوار سے لگا دو تو اس کے پاس پھر کیا چارہ بچتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس دیوار سے ہٹانے کے لیے پلٹ کے تم پہ حملہ کرے. تو اب تو ملک یوں لگتا ہے کہ مکمل انارکی کی طرف جا رہا ہے. وہ جو پولیس اور فوج کے درمیان جو جھڑپیں ہونے لگی ہیں, جس طرح کی آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, یہ سب اشارے ہیں.
وہ انڈیا میں بھی یہ واقعہ ہو گیا, پڑھ لیا ہوگا.
ہاں وہ بھی وہاں پر وہ ہوا ہے, مقبوضہ کشمیر میں.
مقبوضہ کشمیر میں ہو گیا کہ آرمی والوں نے پولیس,
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سینا کو وہ اختیارات حاصل ہیں جو اختیارات پاکستان کی فوج اپنے ملک میں اپنے عوام کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے. تو
یہ لگ رہی ہے وائرس آگے ادھر بھی پھیلے.
تنگ آمد بجنگ آمد, جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو پھر جنگ پہ آمادہ.
تنگ آمد بجنگ آمد. جناب کرامت اللہ واری صاحب, جی سر اختتام کسی کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟
وہ آج کا قطع بھی ابھی میں نے آتے ہوئے گاڑی میں وہ نازل ہوا تو میں سنا دیتا ہوں. ہمیشہ
کرامت بھائی نے نا کبھی اپنے کسی بڑے رشتے دار کا ذکر نہیں کیا. مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کی ایک سسٹر ان لا از ود ایم کیو ایم, مگر آپ نے پروگرام کو کبھی سنا ہوگا. سر ساتھ چلتے ہیں. مثال کے طور پر عمران خان کے 20 اچھائیاں ہیں, اگر ان کی 2 غلطیاں بھی ہیں تو اگر کبھی اس کا ذکر ہو تو آپ ان کا برملا تذکرہ کرتے ہیں. اور خدا کرے کہ وہ آئندہ کبھی آئیں تو وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں
اور
غلطیوں کو دہرائیں نہ.
ان غلطیوں کا خمیازہ وہ بھگت رہا ہے, لیکن بھگت رہا ہے جوان مردی سے, پامردی سے, استقلال سے, عزم و حوصلے کے ساتھ.
صحیح. سر میں آپ کا قطعہ سننا چاہیے.
میری سالی نے تو میری بات مان لی, وہ اب وہ نہ اسمبلی میں ہے نہ سینٹ میں.
اچھا.
ہاں میں اس سے برسوں سے کہہ رہا تھا کہ بیوی نکل آؤ اس دلدل سے. تو سنو,
وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار تو نہیں ہو جائیں گی؟
نہیں 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 نہیں, اللہ کا شکر ہے. آ رہی ہے اگلے مہینے آ رہی ہے امریکہ.
جی سر جی سر.
ماجد صاحب سنیے, ایک شیر دل نے سوئے ہوں کو کیا بیدار. ایک شیر دل نے سوئے ہوں کو کیا بیدار, اس بات پہ ہیں اہل حشم برہم و بیزار. اس بات پہ ہیں اہل حشم برہم و بیزار, جمہور کے ہوں واقف اسرار سیاست.
جمہور
کے ہوں واقف اسرار سیاست. عمران کا جرم تو یہی ہے نا کہ اس نے جمہور کو بیدار کر دیا. جمہور کے ہوں واقف اسرار سیاست, کیوں پھرنا عدالت کی نظر میں ہو خطا کار.
کیا بات ہے. مگر نہیں,
پھرنا عدالت کی نظر میں ہو خطا کار.
ایک اندرونی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. سنا ہے کہ ان کو اب ریلیکسیشن ملتی چلی جائے گی کیونکہ جو اس وقت بھی حکومتی ٹولہ ہے وہ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف کی کشتیاں بالکل جل گئی ہیں, تو عمران خان کو بھی تھوڑا سا اوپن ریلیف دیا جائے گا تاکہ جو برسر اقتدار پارٹیاں ان کو یہ پتا ہو کہ یو نو تھنگس کین
طاقتور حلقوں میں یہ اندر کی بات ہے. بہت زیادہ ابتری ہے, بہت زیادہ مایوسی ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اس لیے کہ اب ان کے اپنے لوگ سوال کرنے لگے ہیں.
صحیح,
اپنے لوگ سوال کرنے لگے ہیں. اور وہ جو ہے نا کہاوت کے ظلم کی ناؤ تو جب بھر جاتی ہے تو پھر ڈوب جاتی ہے.
بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی. ایک بات میں پاکستان میں آپ پروگرام جو دیکھتے ہیں میں صرف اتنا محسوس کرتی ہوں کہ جب میں پاکستان کا پچھلے کئی سالوں سے مقابلہ کرتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت امیر ہیں, کچھ لوگ غریب ہیں, مگر الحمدللہ وی مسٹ کاؤنٹ آر بلیسنگ, دیر آر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ ٹائمز بیٹر دین آر نیبرنگ کنٹری. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ چند لوگ بہت امیر ہیں, ہماری حکومتیں غریب ہیں. جب تک اندرا گاندھی صاحبہ ہوا کرتی تھی ہندوستان میں کوئی سونے کا ایک آنس لے کے بھی نہیں انٹر ہو سکتا تھا, مگر مجھے لگتا ہے کہ دنیا وقت کے ساتھ ساتھ ویلیوز کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان میں تو بڑی تیزی سے یہ فقدان ہوا. پاکستان کے لوگ اگر امیر ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب تک میں نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان چھوڑا تھا تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے تھے وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہا کرتے ہوتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے جیسے ہم سوتے تھے اسی طرح سے, مگر اب تو کام کرنے والا بھی کہتا ہے 8 گھنٹے جس لائک ہیئر. دیکھیے جی شعور تو اس قوم میں یہ آج نہیں کہ ایک عرصے سے یہ شعور آیا اس میں کہ دے ورک فار 8 آورز اے اینڈ دین اگر آپ کے ملازم نے کام نہیں کرنا تو کہنا باجی جی ٹوڈے از مائی برتھ ڈے سو آئی ایم ناٹ کمنگ ٹو ورک. سو دے نو کہ دے آر الاؤڈ ٹو کیپ 12 سے 16 چھٹیاں سال کی, وہ بھی لے سکتے ہیں, یہ بھی ہے. اور اگر لوگ امیر ہیں تو انہوں نے اپنے 7 کوارٹرز بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو, رہائش بھی, اچھا کپڑا پہننے کے لیے, تنخواہیں بہت اچھی ہو گئی ہیں. ایک زمانہ سر تنخواہ بھی تو کم تھی.
امیر تو صرف 2% افراد ہیں اور باقی تو 98%
سر 2% ڈکلیئرڈ ہیں, معذرت کے ساتھ 2% ڈکلیئرڈ ہیں, مگر پاکستان میں آپ شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں
شہروں کی حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ان شہروں کے
سر آپ راتوں کو سڑکوں پہ جا کے دیکھ لیں. میں آپ کو کہتی ہوں یہ آج سے 6-7 سال پرانی بات, گلوریا جینز شروع ہوئی تھی لاہور ڈیفنس میں, اور آپ یقین کیجئے گا رات کو 3:30 بجے میرے بھتیجے نے مجھے کہا پپو لیٹس گو فار دا کافی. تو ہم دونوں ہم لوگ گئی ڈیفنس میں تھے, ہم لوگ گئے, آپ یقین کیجئے گا رات کو 3:30 بجے وہاں پہ اتنا رش تھا کہ میں اگر کہوں تو آپ کو لگے گا میں مبالغہ کر رہی ہوں.
نہیں نہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کراچی میں,
ٹھیک ہے. اور چائے کا کپ کوئی کم قیمت کا نہیں تھا, یہ میں آج سے 6-7 سال پہلی پرانی بات کر رہی ہوں.
کراچی, لاہور, اسلام آباد کے کو اگر کسوٹی بنا کے جانچو پاکستان کو تو پاکستان بہت ہی
شکریہ
بہت ہی مالدار ملک
بہت.
لیکن اندرونی ملک کیا حال ہے
جی سر؟ اس میں بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم لوگوں نے ذرا زیادہ کر بھی دیا, ہم اپنی محبتوں میں بعض اوقات اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم دیکھیے میں ذاتی طور پہ جو راتوں کا لاہور دیکھا ہے جوس کا, میں کینیڈا سے جاتی ہوں وہاں شاپنگ کرنے کے لیے جو خواتین آتی ہیں ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہمیں ایک ڈالر
تو کراچی میں جو لائف سٹائل دیکھتا ہوں نا تو میں اپنے آپ کو بہت غریب سمجھتا ہوں بہت قریب سمجھتا ہوں.
یہ سچ ہے, آنےسٹ ٹو گاڈ یہ سچ ہے. اینی ویز جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں. وی مسٹ کاؤنٹ آر بلیسنگز, الحمد للہ بیٹر دین تھاؤزنڈ. اللہ کرے کہ اگر پاکستان کے پالیٹیشنز اگر ایماندار ہو جائیں نا, ویری مینی تھنگز ول چینج. اسٹے ٹیونڈ, ویل کم بیک آفٹر کمرشل بریک.
پاکستان کی
کون کہتا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وقت پر کلیم ادا نہیں کرتی؟ ایک اور مسکنسپشن کہ لائف, کریٹیکل النس, ڈسیبلٹی یا پھر ٹریول انشورنس بہت مہنگی ہیں. नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है, लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 905-607-5000, 905-607-5000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियरमैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियरमैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, 416-792-8792।
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक, ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं आपके 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस, गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन, 280 रदरफोर्ड रोड, या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर, या इटोबिको, 1770 एल्बियन रोड, या 9909 मार्कम रोड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
भाई सस्ता लाला, इंज कर, तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां, सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, फलो फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विच हो, जिथे मर्जी आ जाओ।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
और बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव, इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट दे, सब्जियां नाले, फल भी ताजा मिल दे, इत्थे मछली, अंडे, दूध, दही ते सस्ते चावल मिल दे, भले पकौड़ियां, ताजा मिठाइयां, गर्म समोसे मिल दे, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपुरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारपुरो, मार्कम रोड ते इंग्लैंडन दा संगम, फोन 416-264-3111।
इधर प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि 6 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा, 6 बजे के बाद न्यूज इन डिटेल जो है वो शादिया साहिबा लेकर के चलेंगी। 7 से लेकर 9 बजे तक क्रिकेट का सेगमेंट होगा। क्रिकेट अब अमेरिका में खेली जा रही है
और कनाडा लूज कर गया, मगर आज भी मैच बड़ा अच्छा रहा। आज भी कमाल का T20 के मैच में श्रीलंकन बैटिंग जमीन बोस और जनूबी अफ्रीका 6 विकेट से कामयाब। आज हमारा फर्स्ट डे, और अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो गिव मी अ कॉल, वी नीड स्पॉन्सर्स। ये 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। टुडे इज द फर्स्ट डे। आज क्रिकेट कनाडा, यस क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट, जनाब रशपाल बाजवा, 7 to 9 क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट रशपाल बाजवा 770 स्टूडियो में मौजूद होंगे। क्रिकेट कनाडा के सदर रशपाल बाजवा साहब स्टूडियो में मौजूद होंगे, शाजिया साहिबा होंगी, जीशान होंगे, जिसमें हम T20 के जो मैचेस अमेरिका में हो रहे हैं इनके बारे में बातचीत करेंगे। रशपाल बाजवा साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में चंद एक चीजों को और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। यकीनन मैं साइफर मुकदमे के बारे में हम बात कर चुके, जजेस और जर्नल्स की भी बात आपके साथ मैंने कर ली कि जो पाकिस्तान के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, उन्होंने कहा है कि मुल्क में सजा और जजा के अमल को बेहतर होना चाहिए। जजों, जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान सबका बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। T20 के बारे में, PIA के बारे में लाजमी बात करना चाहती हूं। PIA के लिए साहब इंटरनेशनल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के सिलसिले में 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया गया, 6 कंपनीज, और उनको वफाकी वजीर निजकारी सरमायाकारी और मुआसलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ। और मुझे कुछ दिखा रहे थे
नहीं?
अच्छा, इजलास में फैसला किया गया कि प्री क्वालिफाइड कंपनियां और कंसोर्शियम्स PIA की बोली में हिस्सा ले सकेंगे। प्री क्वालिफाइड बनने वाली कंपनियों में एयर ब्लू भी है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन भी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, फ्लाई जिना पार्क, एथेनॉल कंसोर्शियम, और देखिए ये लफ्ज मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है,
कंसोर्शियम,
यस, एंड YB होल्डिंग कंसोर्शियम भी मौजूद होगा। वफाकी वजीर निजकारी ने इजलास में गुफ्तगू में कहा कि खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज निजकारी यकीनी बनाई जाएगी। 6 कंपनियों को, अब आप इनको जरा आप गूगल करके देख लीजिएगा ना, कौन कौन सी कंपनी के साथ कौन कौन शामिल है, जिसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, एयर ब्लू है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फ्लाइजना, पाक एथेनॉल और YB होल्डिंग्स, ये कंपनियां शामिल हैं। यहां पर मैं बताना चाहती हूं पाकिस्तान के जो एक वजीर आजम जनाब खाकान अब्बासी, उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रख ली, पार्टी का नाम रख लिया। पार्टी का नाम मुझे पसंद नहीं आया, पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं। स्टूडियो का नंबर 4166201778, 416-620-1778 हमारे स्टूडियो का नंबर है, आपने कॉल करके बताना है। ये साहब वजीर आजम खाकान अब्बासी की पार्टी का नाम है अवाम पाकिस्तान। मुझे तो कोई मतलब, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने जो रखी थी, इट मीन्स तहरीके इंसाफ, इट मीन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग चलती चली आई, काफ बन गई, नून बन गई, बे बन गई, ते बन गई, टे बन गई, वगैरह वगैरह, मगर अवाम पाकिस्तान
रखा है अवामी लीग की तरफ से।
नो, अवाम पाकिस्तान, अवामी लीग, लीग इज डिफरेंट, अवामी लीग, अवाम पाकिस्तान क्या पार्टी का नाम है, अवाम पाकिस्तान। फिर जैसे MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, नाम का मीनिंगफुल नेम है, अवाम पाकिस्तान इज नो। और इसका झंडा भी जो उन्होंने बताया, एक्चुअली आपका लोगो जो, हालांकि खाकान अब्बासी इज अ वेरी फाइन मैन, एंड झंडा नीला और सब्ज रंग का होगा, जैसे पाकिस्तान का जब भी कोई झंडा है तो उसमें लाल हिस्सा किस चीज को, सॉरी सफेद हिस्सा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चांद सितारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काला रंग है, लाल रंग है और एक हरा रंग है, ठीक है, ये किस चीज को जाहिर करता है, भुट्टो साहब की वो थॉट थी, तहरीके इंसाफ का कलर, तो ये कलर्स जो है ये रिप्रेजेंट किया करते होते हैं। इन्होंने अपने झंडा जो रखा है अवाम पाकिस्तान, अवाम पार्टी ने, जो खाकान अब्बासी साहब की पार्टी है, अगले महीने ये जी पार्टी, ये अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका रंग नीला और हरा है, लाल भी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी, अवाम पाकिस्तान पार्टी, व्हाट इज दिस अवाम पाकिस्तान पार्टी?
झंडा अच्छा है,
है?
झंडा बुरा नहीं है,
झंडा बुरा नहीं है, मगर झंडे में देखिए इन्होंने क्या किया है, तहरीक इंसाफ भी शामिल कर ली, पीपल्स पार्टी भी शामिल कर ली, सारे का सारे, मगर नीला रंग मुझे देख के क्या फौरन आया, मैंने कहा इन्होंने इसराइल भी शामिल कर लिया। व्हाट नीला रिप्रेजेंट, व्हाट दिस ब्लू रिप्रेजेंट, बिकॉज समथिंग मस्ट रिप्रेजेंट समथिंग, तो फ्लैग इज अ मीनिंगफुल, इज अ सिम्बॉलिक थिंग।
चांद तारा आसमान पे,
ठीक है, नहीं नहीं चांद तारा ठीक है जी। अच्छा जब ये बात कर रही हूँ अजीत भाई, तो एक खबर को मैं बहुत लाजमी तौर पे कवर करना चाहती हूँ। अब होता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मेरा टेलीफोन गया, मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक खबर जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद जेल भी हो सकती है या उनको हाउस अरेस्ट भी किया जाए, यानी सेड आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम रेडी फॉर दिस,